आज हम भक्ति के छठे लक्षण की चर्चा करेंगे। जैसे कई रविवारों से चर्चा चलती आई है, भक्ति रसामृत सिंधु नाम के ग्रंथ में गौड़ीय वैष्णव आचार्य वर श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति इसकी व्याख्या बहुत अच्छे ढंग से की है। हम सब यहां एकत्र हुए हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, इस श्रद्धा से कि इस तरह से भगवान की सेवा करने से हम जीवन की सफलता को प्राप्त कर पाएंगे, सच्चे आनंद को प्राप्त कर पाएंगे, भगवान के धाम को वापस जा पाएंगे। भक्ति के छह लक्षणों में से पहला था क्लेशकनी, कि भक्ति करने से हमारे सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं, दुखों का निवारण होता है। दूसरा जो फायदा या लक्षण भक्ति का है वो है शुभदा। शुभदा मतलब शुभता प्रदान करने वाला। तीसरा मोक्ष लघुता आकृत, भक्ति प्राप्त करने के बाद मोक्ष या भगवान के निराकार में लीन हो जाना या ये जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना, ये भी तुच्छ प्रतीत होता है। चौथा लक्षण है सुदुर्लभा, कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अति दुर्लभ है, आसानी से प्राप्त नहीं की जा सकती है। पांचवा शांद्रानंद विशेष आत्मा, मतलब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से हमें तीव्र आनंद की प्राप्ति होती है, इतना तीव्र कि इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। और छठा जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं वो क्या है, श्री कृष्ण आकर्षणी, मतलब भक्ति या भगवान की सेवा, प्रेममयी सेवा एक ऐसी चीज है जो कि केवल भगवान को आकर्षित कर सकती है। इस संसार में अगर लोगों को आकर्षित करना है तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छे टिपटॉप फैशनेबल कपड़े पहनने चाहिए, बड़े नए नए मारुति गाड़ी में घूमना चाहिए, है ना, और हमारा घर बड़ा अच्छा होना चाहिए, हमारे पास बहुत पैसे होने चाहिए, नोट वाला होना चाहिए अपने को। इस तरह से लोग आकर्षित हो जाते हैं। ये संसार के लोग धन से, सौंदर्य से, बुद्धि से, बल से, ऐश्वर्य से आकर्षित हो जाते हैं। और किसी व्यक्ति को अगर ये चीजें मिल जाती हैं, अचानक उसके बहुत मित्र हो जाते हैं, है ना, होता है ना, अचानक एक रात में बड़ा पॉपुलर आदमी बन जाता है, बहुत सारे लोग उसकी मित्रता के इच्छुक हो जाते हैं। लेकिन एक रात में उसी आदमी का सब कुछ अगर खत्म हो जाता है तो फिर अगले दिन से ये मित्र दिखाई नहीं देते हैं, कहां चले गए पता ही नहीं पड़ता है, सही है ये भी। तो इस संसार में लोग इन चीजों से आकर्षित होते हैं। हम अच्छे अच्छे कपड़े वगैरह क्यों पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, अगर हम एक जगत में अकेले होते, समझ लीजिए अकेले एक ही आदमी, कोई नहीं और, तो हम क्या अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, अरे देखने वाला कौन है, क्या फायदा है पहन, है ना, ऐसे ही सादा कुछ भी हो पहन के निकल जाते थे। लेकिन दूसरे देखने वाले हैं, उनको बोलना चाहिए, हाँ कितने अच्छा दिखता है, कितने अच्छे कपड़े हैं, कितना सुंदर है। तो दूसरों को आकर्षित करने के लिए हम सब कुछ करते हैं, भले उसमें हमें दुख हो या कुछ हो। जो फैशन के कपड़े होते हैं हम देखते हैं टाई सूट, इतनी गर्मी में भी वो टाई पहन के जगरना पड़ता है, गर्मी में मर रहे हैं, गला बंद हो रहा है, लेकिन वो टाई छोड़ेंगे नहीं, वो आजकल का फैशन हो गया है। और ये पैंट जीन पैंट इतने टाइट, इतने गर्मी होती है गर्मी के मौसम में, यहां धोती देखिए कितना आराम है, मजा है, कोई तकलीफ नहीं। तो हमें तकलीफ कितनी भी होती हो लेकिन दूसरों को हमारी ओर आकर्षित करना चाहिए, कितना सुंदर है, कितने अच्छे कपड़े हैं। तो ये हमारी हमारे विचार करने का ढंग है, लेकिन भगवान ऐसे विचार नहीं करते। भगवान हमारे कपड़ों से, हमारे सौंदर्य से, बुद्धि से, बल से, प्रसिद्धि से, गाड़ी बंगले घोड़ों से आकर्षित नहीं होते हैं। उनके पास बहुत है, कोई कमी नहीं उनके पास। और हमारे पास जब ये चीजें होते हैं वो आकर्षित नहीं होते, और जब ये चीजें चली जाती हैं तो भगवान भी दूर नहीं चले जाते। भगवान जहां है वहीं पर रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास ऐश्वर्य सौंदर्य इत्यादि है या नहीं है। ये संसार में भी हम देखते हैं, जो लोग आत्म साक्षात्कारी होते हैं वो स्वतंत्र रहते हैं, निरासक्त रहते हैं संसार से। क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर वो एक आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, इसलिए अपने आनंद के लिए अपने बाहर किसी वस्तु पर निर्भर नहीं रहते। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो रहता है वो बाहरी सारे इंद्र तृप्ति की चीजों को त्यागता है, इनमें रमण नहीं करता। आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, तुष्टि संतुष्टि किसमें लेता है? अपने अंदर, अपने आत्मा में आध्यात्मिक आनंद लेता है, बाहरी आनंद लेने का प्रयास नहीं करता है। तो ऐसा व्यक्ति आत्माराम कहलाता है, इसलिए वो बाहरी चीजों से आसक्त नहीं होता। लेकिन जो आदमी बाहरी चीजों से आसक्त होता है, इनसे आकर्षित होता है, वो इन चीजों के नियंत्रण में आ जाता है। ये आसक्ति इतनी खतरनाक है कि हमको वश में कर डालती है। अगर हम पैसे से आसक्त हैं तो पैसे हमको नियंत्रण में करके रखता है कि नहीं? अगर पैसा चला जाए तो दुख होता है कि नहीं? जितने आसक्त हम हमारे धन से हैं उतना ही दुख हमें होगा जबकि यह धन हमसे छीन लिया जाएगा। जितना आसक्त हमारे सौंदर्य से हम हैं, जब बुढ़ापा आएगा सौंदर्य जाएगा उतने ज्यादा दुख होगा। अगर हमारा बहुत नाम इज्जत प्रसिद्धि है समाज में, अगर हम इससे बहुत आसक्त हैं, जब भी ये सम्मान चले जाएगा बहुत दुख हो जाएगा। तो जब हम इन बाहरी चीजों से आसक्त हो जाते हैं तो वो चीजें हमें नियंत्रित करते हैं, ये आसक्ति हमें गुलाम बना देती है, हमारा कोई स्वतंत्रता नहीं रह जाता है फिर। लेकिन भगवान ऐसे बाहरी भौतिक चीजों से आकर्षित नहीं होते हैं। भगवान किस चीज से आकर्षित होते हैं? अपने आध्यात्मिक शक्ति से, भौतिक शक्ति से नहीं। भगवान के आध्यात्मिक शक्ति से उनको दिव्य आनंद मिलता है, इसलिए इस आध्यात्मिक शक्ति को क्या कहते हैं? पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कौन सी शक्ति है? ह्लादिनी शक्ति। ह्लादिनी, आह्लाद संस्कृत में मतलब आनंद। तो ये ह्लादिनी शक्ति से भगवान आकर्षित होते हैं क्योंकि इससे भगवान को दिव्य आनंद मिलता है। और ये आध्यात्मिक शक्ति, ह्लादिनी शक्ति का सार है भगवत प्रेम, भक्ति। इसलिए जिसके पास भगवत प्रेम है, जिसके पास भक्ति है, भगवान उस व्यक्ति से आकर्षित होते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण भक्ति से आकर्षित होते हैं और जिसके पास भक्ति है उससे आकर्षित होते हैं, और किसी भी चीज से आकर्षित नहीं होते। आदमी सुंदर हो न हो, शिक्षित हो या न हो, अमीर हो या गरीब हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, भारतीय हो, अमेरिकन हो, जापानी हो, शूद्र हो, ये जाति का वो जाति का, भगवान कुछ नहीं देखते, केवल मनुष्य भेदभाव करते हैं, ये हमारी जाति का वो दूसरे जाति का। भगवान के दृष्टि में कोई फर्क नहीं कौन कौन से जाति का है। भगवान आत्मा को देखते हैं, हृदय को देखते हैं, हृदय में इसकी भक्ति कितनी है, मेरे प्रति प्रेम कितना है इसके पास, उस प्रेम की तीव्रता के अनुसार भगवान आकर्षित होते हैं या अपने आप को उदासीन रखते हैं। वैसे ये लादिनी शक्ति या भक्ति की जो अधिष्ठाता देवी हैं, वो है श्रीमती राधा रानी। राधा और कृष्ण हमेशा साथ में रहते हैं, तो श्रीमती राधा ये भक्ति के सर्वोच्च रूप है। इनसे ज्यादा कोई ऊंचा भक्त नहीं हो सकता है। तो भक्ति ये क्या चीज है? भक्ति ये कोई संसार का कार्य नहीं है। हालांकि बाहरी रूप से ऐसे लगता है, जैसे कोई व्यक्ति खा रहा है, भगवत भक्त जो होता है वो बड़े प्रेम से प्रसाद को ग्रहण करता है, और सामने होटल में बैठा वाला आदमी वो कुछ और वहां का भोजन खा रहा है। बाहरी दृष्टि से लगता है कि दोनों एक ही है, लेकिन यहां मंदिर में बैठकर जो भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद बड़े प्रेम से ग्रहण कर रहा है, ये जानते हुए कि ये भगवान से अभिन्न है, ये भगवान की कृपा है, वो भक्ति कर रहा है। और ये जो खाने का उसका कार्य है, ये आध्यात्मिक है, ये इस संसार से संबंधित नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत का कार्य है। लेकिन वहां होटल में बैठ के जो कार्य करता है, जो भी खाता है वहां पर, वो इस भौतिक जगत का कार्य है। भक्ति के जो भी कार्य होते हैं वो श्रीमती राधा रानी के नियंत्रण में चलते हैं, लेकिन यहां जो भौतिक संसार में कार्य चलते हैं वो किसके नियंत्रण में चलते हैं? वो महामाया के नियंत्रण में चलते हैं, दुर्गा देवी के नियंत्रण में चलते हैं। इसलिए वृंदावन में जो भी भक्त अपने भक्ति में परिपूर्णता या समसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वो श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेते हैं, उनके पद चिन्हों में चलने का प्रयास करते हैं। तो यह है भक्ति की शक्ति। और जब कोई भक्त इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के शरण में आ जाता है, उनकी सेवा करता है, फिर भगवान उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। महात्मा कौन होता है, इस शब्द का वर्णन भगवान करते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः। हे अर्जुन, महात्मा वो व्यक्ति है जो कि मेरे दैवी प्रकृति का आश्रय लेता है। भगवान ने कभी भी गीता में ये नहीं बताया कि महात्मा वो व्यक्ति है जो राजनीति में होता है, जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करता है। भगवान ने ऐसा नहीं कहा गीता में। भगवान ने कहा है, जो व्यक्ति मेरे दैवी प्रकृति का आश्रय लेता है वो महात्मा है। भजन्ति अनन्य मनसो, जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्, ये जानते हुए कि मैं सारे प्राणियों का स्वामी हूं, मैं प्रभु हूं। तो ये दैवी प्रकृति क्या है? ये दैवी प्रकृति श्रीमती राधा रानी है। इसलिए जब कोई भक्त श्रीमती राधा रानी के शरण में रहकर उनके पद चिन्हों में चलकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है, तो फिर भगवान श्री कृष्ण इसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, ऐसे भक्त के प्रति। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को भी आकर्षित करती है। कामदेव का एक नाम है मोहन, मदन मोहन, क्योंकि वह सबको आकर्षित करता है। ये संसार में सबको वश में करता है, है ना? सारा संसार कामदेव के वश में है कि नहीं? इसलिए उसको मदन मोहन मोहन कहते हैं। लेकिन कामदेव को आकर्षित करने वाले व्यक्ति है मदन मोहन, श्री कृष्ण। कामदेव है मदन, लेकिन मदन को आकर्षित करने वाले हैं मदन मोहन, जिनका आकर्षण मदन से, कामदेव से करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा है। और मदन मोहन श्री कृष्ण को आकर्षित करने वाली हैं श्रीमती राधा रानी, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी। तो जो व्यक्ति राधा रानी के आश्रय में आता है और इस तरह से भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है, भगवान ऐसे व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर बात है ये। भगवान हमारे किसी भौतिक चीज को देखते नहीं है, इसलिए किसी को निराश नहीं होना चाहिए। हम ये जाति के हैं, वो धर्म के हैं, इस देश के हैं, हमें संस्कृत नहीं आता, हम बूढ़े हो गए, हम बच्चे हैं, हम अशिक्षित हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमने हृदय से श्री श्री राधा कृष्ण का शरण लिया तो भगवान हमारे प्रति आकृष्ट होकर हमें भक्ति मार्ग में आगे ले जाकर उनके धाम में ले जाते हैं। इसी बात की पुष्टि स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में करते हैं। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में 23 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को उपदेश देते हैं। काफी लंबा उपदेश है, इसको 23 अध्याय पूरे लग जाते हैं। और इसलिए इस भाग को उद्धव गीत कहा जाता है। जैसे भगवत गीता है जिसमें भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था, ठीक उसी तरह से यह उद्धव गीता है जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र और भक्त उद्धव को उपदेश दिया था। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त करने वाले थे, उन्होंने देखा था कि अब यहां मेरे भक्तों का पार्षदों का रहना भी अब आवश्यक नहीं है, क्योंकि जिस कार्य से मैं यहां आया था वो समाप्त हो चुका, अब मुझे स्वधाम लौटना चाहिए और मेरे भक्तों को भी साथ में ले जाना चाहिए। उद्धव इस बात को समझ गए कि भगवान की योजना क्या है, और फिर वो श्री कृष्ण के पास आए एक एकांत स्थान में और कहने लगे कि हे कृष्ण, अभी आप लौट के जाने वाले हैं मुझे पता चल गया, और आप सारे यदुकुल के लोगों को भी वापस ले जाने वाले हैं स्वधाम, और मैं यहां अकेला नहीं रहना चाहता हूं। हालांकि उद्धव भी उनके नित्य पार्षद हैं, उनको भी जाना था लेकिन इस समय नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को सांत्वना दी और कहा कि हे उद्धव, तुम चिंता नहीं करो, क्योंकि तुम मेरे शुद्ध भक्त हो, तुम हमेशा मेरा स्मरण करते हो, अब तुम संन्यास ले लो और बद्रिक आश्रम चले जाओ, वहां सतत मेरी सेवा करते रहो, और जब प्राण त्यागोगे तो उस समय तुम मेरे पास लौटकर आओगे, डरना नहीं। उस समय उद्धव ने कई प्रश्न किए भगवान श्री कृष्ण से, और भगवान श्री कृष्ण ने कई विषयों के ऊपर प्रवचन दिया उद्धव को, भक्ति योग के बारे में, ज्ञान योग, अष्टांग योग, वर्णाश्रम धर्म, अर्चा विग्रह की सेवा, जीव का किस तरह से बंधन होता है ये भौतिक जगत में, इस बंधन से वो कैसे मुक्त हो सकता है, नाना प्रकार के महान भक्तों की कथा इत्यादि, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे विषयों के ऊपर उपदेश किया उद्धव को। इस दौरान उन्होंने भक्ति की व्याख्या भी बड़े विस्तार में की। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को बताया कि उनके भक्त कितने महान हैं, और वो बताने लगे कि क्या कारण है कि वो अपने भक्तों के प्रति इतने आकर्षित हो जाते हैं, उनमें वो कौन से गुण हैं, उनमें वो क्या चीज है जिसकी वजह से भगवान अपने आप को भक्तों के हवाले कर देते हैं। वो उद्धव से कहने लगे कि उद्धव, मेरे भक्त जो होते हैं ना, वो इस संसार की किसी भी चीज को नहीं चाहते हैं, वो ब्रह्मा जी के पद को, ब्रह्मा जी के धाम को, इंद्रदेव स्वर्गलोक के राजा के पद को, स्वर्ग के ऐश्वर्य को, इस पृथ्वी लोक के साम्राज्य को, निम्न श्रेणी के लोक जो हैं उनके ऊपर उनका एक राजपद के लिए, या तो और कोई जो धन ऐश्वर्य संभोग का आनंद है, किसी भी चीज को नहीं चाहते हैं, यहां तक कि वो मोक्ष को भी नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो केवल मुझे चाहते हैं, मेरे अलावा और किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को नहीं चाहते हैं। ये है मेरे भक्तों के गुण हे उद्धव, और उनका चित्त सतत मेरे ऊपर केंद्रित रहता है। इस तरह से उन्होंने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया होता है और उनका मन सदा मेरे लीलाओं के ऊपर, मेरे सुंदर रूप के ऊपर, मेरे गुणों के ऊपर केंद्रित रहता है, रत रहता है। उनके मन में कोई भोग की भावना नहीं रहती है, सदा मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं, दिन रात मेरी ही सेवा करते रहते हैं। और इस तरह से उनके हृदय में कोई दुर्गुण नहीं रहते हैं। देखो है उद्धव मेरे भक्तों के गुण, मन हमेशा शांत, बुद्धि हमेशा स्थिर, इंद्रिय हमेशा मेरी सेवा में, हृदय में ईर्ष्या द्वेष का लेश भी चिन्ह नहीं, किसी को भी शत्रु नहीं मानते हैं, सभी को अपना मित्र मानते हैं, और करुणा की भावना सारे प्राणियों के ऊपर वो रखते हैं, सबको समान दृष्टि से रखते हैं, ऐसा नहीं कि कोई अपना कोई पराया। इस तरह से हे उद्धव मेरे भक्तों का मन सदा मेरे ऊपर केंद्रित रहता है। और उद्धव अगर भी भक्ति में परिपक्व होने की वजह से किसी न किसी वजह से मेरा भक्त अगर अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया हो और बीच बीच में कभी कभी वो इंद्रिय तृप्ति के विचारों से हैरान होते जाता हो, फिर भी उसका नाश कभी नहीं होगा है उद्धव, वो अंत में विजयी निकलेगा, क्योंकि उसके हृदय में मेरे प्रति तीव्र भक्ति है। तीव्र भक्ति की वजह से वो इन कमजोरियों को पार कर पाएगा, इनके ऊपर विजय प्राप्त कर पाएगा। कभी कभी होता है ना ऐसे, आप सबको अनुभव है, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, जप करने बैठे हैं, लेकिन मन में इंद्र तृप्ति के विचार आते हैं, यहां आनंद लेंगे, वहां आनंद लेंगे, यहां भोग करेंगे, आते हैं ऐसे विचार नहीं आते? सब शुद्ध भक्त आते हैं ना। इसलिए कृष्ण कहते हैं हो सकता है, लेकिन कोई डर नहीं है, क्योंकि अगर उस भक्त के हृदय में मेरे प्रति तीव्र प्रेम है तो फिर ये तीव्र प्रेम की वजह से वो अंत में विजयी होगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे संप्रदाय में जो एक महान आचार्य रहे, वो बताते हैं कि जैसे एक युद्ध भूमि पर कभी कभी एक शूर वीर योद्धा घायल हो जाता है किसी अस्त्र शस्त्र से, लेकिन इस अस्त्र को स्वीकार करता है, लेकिन वो इतना शूरवीर रहता है, शक्तिशाली रहता है, इतना उतना साहस रहता है उसके अंदर कि इसकी ज्यादा परवाह न करते हुए आगे युद्ध करते रहता है और अंत में जीत जाता है। ठीक उसी तरह से जब मेरे भक्त के हृदय में मेरे प्रति प्रेम होता है, श्रद्धा होती है, अगर भी उसकी इंद्रियां कभी कभी तकलीफ देती हैं उसको, लेकिन अपने प्रेम के श्रद्धा के बल पर वो भक्ति में आगे बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, निराश नहीं होता है, ये नहीं सोचता कि अरे रे बेकार है, चलो भक्ति छोड़ दो, क्या फायदा है, अभी सब इंद्रियों मंदिर तृप्ति की इच्छाएं मन में आ रही हैं, चलो छोड़ दो, अपने काम की बात नहीं है, नहीं, वो युद्ध करते रहता है माया के खिलाफ, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, क्योंकि उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान को छोड़ना नहीं चाहता है। इस तरह से अंत में वो विजयी होगा। क्यों विजयी होगा? क्योंकि हे उद्धव मेरी जो भक्ति की पद्धति है, मार्ग है, वो एक प्रज्वलित अग्नि के समान है। जिस तरह से अग्नि उस लकड़ी के टुकड़ों को जलाकर भस्म कर देती है, राख कर देता है, उसी तरह से मेरे भक्ति रूपी जो या अग्नि रूपी जो भक्ति है वो हृदय में जो भी पाप है उनको नष्ट कर डालते हैं। हमने इतने सारे पाप किए हैं आज तक, इसलिए ये इंद्र तृप्ति के विचार मन में आते हैं, पाप करने की वजह से ये संस्कार मन में चित्त में बैठ जाते हैं और ये चित्त हमें आगे प्रेरित करते हैं इंद्र तृप्ति करने के लिए, और ये विचार भी मन में आते हैं। आपको याद होगा ना, जब हम भक्ति के पहले लक्षण की चर्चा कर रहे थे, क्लेश अग्नि, इसके बारे में हमने गहराई में चर्चा की थी कि किस तरह से ये बीज होता है, कूट होता है, फिर आगे चल के ये बढ़ जाता है, फिर हम पाप करते हैं, इसका फल मिलता है। तो पूर्व किए हुए पापों की वजह से इंद्र तृप्ति की इच्छाएं मन में आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन भक्ति करने से ये पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए मन भी शांत हो जाता है। मन ऐसे इंद्र तृप्ति की इच्छाओं से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने फिर उद्धव को एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक कहा, न साधयति माम योगो न सांख्याम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपः त्यागो यथा भक्तिर्ममूर्छित। हे उद्धव, जब कोई व्यक्ति ऊर्जिता भक्ति मम, जब मेरी तेज तीव्र भक्ति करता है तो मुझे वश में कर लेता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वाध्याय करता हो, सांख्य योग सांख्य दर्शन को पढ़ता हो, योगाभ्यास करता हो, वर्णाश्रम धर्म का पालन करता हो, या नाना तरह के तपस्या करे, संसार को त्याग करे, लेकिन इन सारी चीजों से वो मुझे वश में नहीं कर सकता, जिस उस तरह से कि जैसे व्यक्ति भक्ति करने से मुझे वश में कर सकता है। इस तरह से भगवान भक्ति से आकर्षित होकर भक्त के वश में आ जाते हैं, ये भक्ति की खूबी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बताते हैं कि ऐसे भक्त के गुण इतने सुंदर होते हैं, इस तरह की शरणागति उस भक्त की होती है मेरे चरण कमलों के प्रति, इतना आश्रय लिया होता है वो मेरे चरणों के प्रति, मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है वो, इसलिए ऐसे गुणों से हे उद्धव मैं आकर्षित हो जाता हूं। एक बार वृंदावन में क्या हुआ कि नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण को देखने आए, और भगवान कृष्ण नारद मुनि को दिखलाना चाहते थे कि वृंदावन के गोपियों का प्रेम कितना श्रेष्ठ है, कितना तीव्र है। तो उन्होंने कहा, नारद मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, कृपया आपके चरणों के धूले मुझे दे दो, भक्तों के चरण धूले से मेरा सर दर्द दूर हो जाएगा। तो नारद मुनि हैरान, अरे चरणों की धूले कैसे दे सकता हूं। उन्होंने और लोगों से पूछा और सबने सोचा, अरे भगवान के सर के ऊपर हमारे चरणों की धूलि असंभव, हम तो नरक में जाएंगे, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। फिर कृष्ण ने नारद मुनि से कहा, अब जाके गोपियों से पूछो। तो नारद मुनि गोपियों के पास गए, अरे गोपियां सुनो, अभी श्री कृष्ण के सर में दर्द हो रहा है और इसके लिए एक ही औषध है। कृष्ण के सर में दर्द हो रहा है, अच्छा कौन सा औषध है, बोलो बोलो क्या औषध चाहिए। उन्होंने कहा कि आपके चरणों की धूलि चाहिए, केवल उससे जब कृष्ण उसको सर में लगाएंगे, लेप लगाएंगे, तब उनका सर का दर्द चले जाएगा। अच्छा ले लो ले लो, कितने धूल चाहिए ले लो, बाल्टी बाल्टी भर भर के ले लो, चलो कितना धूल चाहिए। तो तुरंत सारे गोपियों ने अपने चरणों में जितने भी धूल थी उठाकर बाल्टी में भर भर के ले दिए नारद मुनि को, ले जाओ ले जाओ, हम नरक में चले जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण का सरदर्द तो दूर हो जाएगा ना। इसका मतलब है कि कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण को आनंद देने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर भक्त को नरक भी जाना पड़े तो भक्त तैयार होता है। ये होते हैं भक्त के गुण, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण ऐसे भक्तों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बताते हैं आगे चल के कि हे उद्धव, मेरी ये अभिलाषा है कि मेरे सारे भक्तों के चरण धूलि से मैं इन सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को शुद्ध कर दूं जो कि मेरे हृदय में है, जो कि मेरे अंदर हैं। माता यशोदा ने जब भगवान श्री कृष्ण का मुंह खोल दिया, जब कृष्ण के प्रति मिट्टी खाने का आरोप आया था, तो उन्होंने क्या देखा, अनंत कोटि ब्रह्मांड देखे। इसका मतलब है कि सारे ब्रह्मांड श्री कृष्ण के दिव्य शरीर के भीतर हैं। तो अशुद्ध कैसे हो सकते हैं? सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से आता है, तो कोई भी वस्तु अशुद्ध कैसे हो सकता है? लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हालांकि ये अनंत कोटि ब्रह्मांड मेरे अंदर हैं, लेकिन इनको मैं शुद्ध करना चाहता हूं। कैसे? मेरे भक्तों की चरण धूलि से, और मैं मेरे भक्तों के पद चिन्हों में चलना चाहता हूं। इस हद तक भगवान अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। वैसे भक्त भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों में चलना चाहते हैं, लेकिन भगवान भक्तों के पद चिन्हों में चलना चाहते हैं। इसलिए भक्ति के क्षेत्र में ये एक अचिंत्य दिव्य स्पर्धा होती है, प्रतियोगिता भक्त और भगवान के बीच में, कि कौन एक दूसरे की सेवा ज्यादा कर सकता है, कौन एक दूसरे से प्रेम ज्यादा कर सकता है। इसमें तर्क वितर्क का कोई स्थान नहीं है। यह न्याय शास्त्र, व्याकरण, ये वो सब दर्शन शास्त्र कोई काम नहीं करते। यहां केवल शुद्ध प्रेम भक्ति काम करती है। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि भगवान ऐसे प्रेम से, ऐसे व्यक्ति से पूरी तरह से आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए भगवान आगे बताते हैं उद्धव को कि मेरे भक्ति की वजह से ऐसे भक्त के हृदय में मैं उसे दिव्य आनंद प्रदान करता हूं, और ये आनंद इतना तीव्र होता है उद्धव कि जो लोग मेरे भक्त नहीं हैं, वो इस आनंद की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अभक्तों का मतलब जो भोगवादी लोग हैं, इनकी बात तो दूर है, लेकिन जो ज्ञानी हैं, अष्टांग योगी हैं, इनको भी कल्पना नहीं है कि मेरे भक्तों के हृदय में कितना तीव्र आनंद है। और इसलिए मेरे भक्त जहां भी जाते हैं सुखी होते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जैसे एक बहुत अमीर आदमी होता है, जहां भी वो भ्रमण करता है वो बड़े शानदार जगह में ठहरता है। आजकल के दृष्टि से देखा जाए तो कोई बहुत अमीर आदमी अगर देश प्रदेश जाता है या किसी दूसरे शहर में भी जाता है तो कहां ठहरेगा? धर्मशाला में, लॉज में ठहरेगा, फाइव स्टार होटल में ठहरेगा, ताजमहल होटल, बड़े बड़े होटलों में जहां एक चाय के लिए 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, ऐसे स्थान में रहेगा आराम से, क्योंकि है वो धनी आदमी। तो जहां भी जाएगा ऐसे ही सुविधाजनक स्थानों में रहेगा। ठीक उसी तरह से भक्त के हृदय में ही आनंद है, तो जहां भी वो जाता है दुनिया के किसी भी कोने में वो आनंदित रहता है। विश्वम सुखम विश्वम पूर्ण सुखायते, प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं भक्त के लिए सारा विश्व भर में सुख ही सुख है। अब आप पूछेंगे, अरे ये क्या है? गीता में तो भगवान ने बताया दुखालयम शाश्वतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, की जगत का दोष ही है, दुख से भरा हुआ है। तो एक जगह गीता में भगवान बताते हैं कि ये भौतिक जगत दुख से भरा हुआ है, और वैष्णव आचार्य बताते हैं सुख से भरा हुआ है। अरे ये कैसे हो सकता है? ये विरोधाभास लगता है, लेकिन नहीं। प्रबोधानंद सरस्वती इस जगत को सुख से भरा हुआ इसलिए देखते हैं क्योंकि उनके हृदय में सुख है, उनके हृदय में तीव्र आनंद है। ये सही बात है ना? जब हम मन से शांत होते हैं, खुश होते हैं, तो सब कुछ सुंदर दिखाई पड़ता है कि नहीं? किसी गंदे जगह में भी जाएंगे वहां भी सौंदर्य दिखाई पड़ता है, और आकाश में पंखे पंछी और ये वो देख के तो मन और खिलता है, खिल उठता है। लेकिन जब मन बेचैन होता है, मन में कोई दुख होता है, तो कितने भी सुंदर स्थान में हम जाएंगे हमें क्या लगता है? कोई मजा नहीं आता है ना? तो इसलिए एक विदेश के कवि ने भी कहा है कि ये मन एक ऐसी चीज है जो स्वर्ग को नरक बना सकती है, नरक को स्वर्ग बना सकती है। सब कुछ मन के ऊपर निर्भर है। मन में दिव्य आनंद है तो सब जगह आनंद ही आनंद होगा, और मन में भक्ति नहीं, आनंद नहीं, तो सब जगह दुख ही दुख दिखाई पड़ेगा। इसलिए भगवान के भक्त में, भक्त के हृदय में भगवान ये लादिनी शक्ति या दिव्य आनंद प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से हमेशा वो आनंदित ही रहता है। और किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ऐसे भक्ति से ज्यादा आकर्षित होते हैं, इसका वर्णन श्रील नारद मुनि श्रीमद् भागवत के सातवें स्कंध में भी करते हैं। जब वो हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा समाप्त करते हैं, उसके बाद में आपको याद होगा कि ये सारी कथा, प्रहलाद महाराज की कथा, नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाई थी, जबकि युधिष्ठिर महाराज के मन में संशय उत्पन्न हुआ था कि भगवान क्या कभी पक्षपात करते हैं या नहीं, या भगवान सबको समान दृष्टि रखते हैं। अगर समान दृष्टि रखते हैं तो फिर असुरों का वध करके फिर वो देवताओं को बचाते क्यों हैं? तो सुखदेव गोस्वामी को यह प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछा था, और सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि यही प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि को पूछा था, इसलिए भगवान श्री नारद मुनि ने जो उत्तर दिया वही मैं आपको सुनाने वाला हूं हे राजन। और फिर नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को जय विजय की कथा सुनाई, कैसे जय विजय को शाप लगा, फिर उनको यहां जन्म लेना पड़ा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में, और फिर प्रहलाद का जन्म हुआ, कैसे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को हैरान किया, कैसे प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान ने नरसिंह देव का रूप धारण किया। और फिर नारद मुनि ने इस तरह से प्रहलाद का गुणगान जब किया तो युधिष्ठिर महाराज के मन में थोड़ा बहुत संशय उत्पन्न हुआ होगा। ऐसे आचार्य समझाते हैं कि जब प्रहलाद जैसे भक्त के बारे में कोई दूसरा भक्त सुनता है बहुत प्रभावित होता है और सोचता है कि मुझे प्रहलाद के पदचिन्हों में चलना ही चाहिए, कितने महान भक्त हैं प्रहलाद, मुझे भी इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए भक्ति मार्ग में। एक तरह की प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है, मार्ग मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ मन में एक संशय भी उत्पन्न हो सकता है। और वो संशय क्या है? वो संशय ये हो सकता है कि अरे प्रहलाद कहां और हम कहां, प्रहलाद इतने महान भक्त और हम तो क्या साधारण भक्त हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम इतने नीच हैं, तो हम कैसे प्रहलाद का स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है, प्रहलाद ने तो भक्ति की, भगवान स्वयं उनके लिए आए, हमारे लिए कहां भगवान आते हैं, हम तो साधारण आदमी हैं। तो ऐसे ही विचार युधिष्ठिर महाराज के मन में आए थे, और युधिष्ठिर महाराज मन में सोच रहे थे, हाँ प्रहलाद के तो क्या कहने, भक्त हो तो ऐसे, कितने महान भक्त हैं ये प्रहलाद, नारद मुनि ने जो वर्णन किया है प्रहलाद के बारे में, मैं कितना प्रभावित हुआ हूं उससे, मैं भी प्रहलाद के पदचिन्हों में चलना चाहता हूं, काश मैं भी प्रहलाद की तरह भक्त हो सकता, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा संभव नहीं है, मैं कितना नीच हूं, मेरे में कोई योग्यता पात्रता नहीं है भक्ति करने के लिए, मेरे अंदर केवल भोग की भावना है, तो मैं कैसे प्रहलाद के सामना प्रहलाद के पदचिन्हों में चल सकता हूं। तो नारद मुनि को ये पता चल गया, क्योंकि भगवान के भक्त जो होते हैं वो एक्सरे दर्शी होते हैं। एक्सरे दर्शी जानते हैं? त्रिकालदर्शी, एक्सरे दर्शी। एक्सरे मतलब क्या? जब हड्डियों का फोटो लेने जाते हैं ना आप दवा खाने में, उसको एक्सरे बोलते हैं। मतलब आपके चमड़ी में से अंदर जाके हड्डियों का फोटो लेता है वो मशीन, फिर हड्डी में कोई चोट पहुंची है नहीं, हड्डी टूट गया नहीं, वो समझ में आता है। तो उस तरह से शुद्ध भक्त जो होते हैं वो सीधे हमारे हृदय में देखते हैं कि हृदय में क्या भावना है। तो नारद मुनि को पता चल गया कि युधिष्ठिर महाराज ऐसे सोच रहे हैं। वैसे तो युधिष्ठिर महाराज महान भक्त है, प्रहलाद के श्रेणी में है, बल्कि प्रहलाद से युधिष्ठिर महाराज। लेकिन भक्त की पहचान, भक्त के गुण ऐसे होते हैं कि भक्त कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो अपने आप को हमेशा तुच्छ और छोटा ही समझता है। तो फिर युधिष्ठिर महाराज का हौसला बढ़ाने के लिए, उनको प्रेरणा उत्साह देने के लिए नारद मुनि ने एक सुंदर श्लोक कहा, यूयम निनो के बतभूर भागा लोकम पुनाना मुनयो भियंती
येषां गृहाणा वसतीति साक्षात् गूढ़ं परं ब्रह्म मनुष्यलिंगम्।
नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कहने लगे कि हे राजन, भूरि भागा, आप कितने भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि आपके घर में मनुष्य लिंगे मनुष्य रूप धारण किए हुए परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण निवास कर रहे हैं लंबे समय के लिए। और इतना ही नहीं, मुनयो अभियंति, जगह जगह से साधु ऋषि मुनिगण आपके घर में आते हैं अतिथि के रूप में, केवल आपका और भगवान का दर्शन करने के लिए। तो आपका सौभाग्य कितना है, आप इस पृथ्वी लोक में सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। यह नृलोके शब्द का प्रयोग करते हैं नारद मुनि, मतलब इस भौतिक जगत में आप भाग्यशाली हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अन्य लोग भी हैं जो कि भाग्यशाली हैं, जो कि भगवान के भक्त हैं, जैसे ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, कश्यप मुनि हैं, मरीचि हैं, अन्य कितने सारे भक्त हैं ये ब्रह्मांड में। लेकिन पांडवों का भाग्य इनसे अधिक है। क्यों? क्योंकि नारद मुनि कह रहे हैं कि स्वयं भगवान आपके घर में आपके साथ में सदा निवास करते हैं, इसलिए आपका भाग्य इन सब भक्तों के भाग्य से ज्यादा है। इसलिए आप ये नहीं समझो हे युधिष्ठिर महाराज कि आप उनसे कम हैं। वैसे नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से ये बताना चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज, आप सब पांडव जो हैं प्रहलाद के बराबर के हैं, आप ये नहीं समझो कि आप प्रहलाद के निम्न श्रेणी से के प्रहलाद की तुलना से निम्न श्रेणी के हैं। अगर भगवान ने प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह रूप का धारण किया और प्रहलाद को भगवान का निजी सानिध्य मिला, तो आप भी कोई कम नहीं है। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण आपके सानिध्य में हैं, वो भी आपके साथ में हैं, आपके मित्र के रूप में, आपके भाई के रूप में, आपके दूत के रूप में, आपके सेवक के रूप में आपके साथ में रहते हैं। देखिए आपका सौभाग्य कितना है। तो नारद मुनि का कहना यहां कितना महत्वपूर्ण है। तो नारद मुनि कहना चाहते थे कि हे युधिष्ठिर, आप सब पांडव भगवान की योग माया की शक्ति की वजह से कृष्ण को नहीं पहचान पा रहे हो। आप नहीं जानते कि आपका मित्र आपका भाई वास्तव में भगवान है, इसलिए आप कितने भाग्यशाली हो आप नहीं समझ पा रहे हो योग माया के प्रभाव से। और अन्य लोग जो हैं वो महामाया के प्रभाव से भी इसी कृष्ण को पहचान नहीं सकते हैं, वो भी कृष्ण को साधारण आदमी समझते हैं। लेकिन जो संत ऋषि मुनि हैं वो सही समझते हैं कि आपके घर में भगवान श्री कृष्ण निवास कर रहे हैं आपके मित्र बनकर, इसलिए वो कोई ना कोई बहाना बनके आपके अतिथि बनके आते हैं। राजसूय यज्ञ हो, ये हो, वो हो, ये यज्ञ हो, वो यज्ञ हो, लेकिन वास्तव में वो भगवान के और भगवान के शुद्ध भक्तों का दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए वो आ रहे हैं। इसलिए खुद नारद मुनि भी आए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पांडव कितने भाग्यशाली हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रहलाद से भी ज्यादा भाग्यशाली पांडव है, क्योंकि प्रहलाद के साथ तो भगवान नरसिंह देव थोड़े समय के लिए रहे, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, चले गए भगवान, आशीर्वाद देकर सबको बहुत देर गुड़गुड़ किया, सबको डरा दिया, सारे देवतागण भी डर गए, ब्रह्मा जी शिव जी भी आगे आने के लिए तैयार नहीं थे, केवल प्रहलाद आगे आए, भगवान को शांत किया उन्होंने, लेकिन बाद में नरसिंह देव चले गए। लेकिन पांडवों का सौभाग्य देखिए, उनके साथ में भगवान श्री कृष्ण एक साधारण मनुष्य की तरह रहे। और भगवान कृष्ण ने क्या क्या किया पांडवों के लिए, नहीं केवल इनके मित्र थे, इनके सेवक भी बने। जब शांति का प्रस्ताव रखना था युधिष्ठिर महाराज को, तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आप जाओ और हमारा संदेश धृतराष्ट्र और दुर्योधन को दे देना, और आज्ञा का पालन किया कृष्ण ने। कृष्ण गए हस्तिनापुर, पांडवों का संदेश लेकर। आगे चल के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की सेवा की सारथी बन के। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण हमेशा एक साधारण व्यक्ति की तरह पांडवों के बीच में रहे, और युद्ध के समय भी अर्जुन ने कितने सारे आदेश दिए कृष्ण को, बाएं चलो, दाहिने चलो, सीधे चलो, रोक जाओ, तेजी से चलो। और कृष्ण भगवान बड़े आज्ञाकारी सारथी बने, अर्जुन के हर एक आज्ञा का पालन किया। तो ऐसी क्या बात थी पांडवों में, भगवान क्यों आकृष्ट हुए पांडवों के संग में रहने के लिए? क्योंकि पांडवों का प्रेम, पांडवों की भक्ति, पांडवों की मित्रता की भावना, इन चीजों ने भगवान श्री कृष्ण को पांडवों के प्रति आकर्षित किया। तो देखिए भक्ति कितनी ज्यादा शक्तिशाली है। हां, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, भगवान से ज्यादा कोई शक्तिशाली नहीं है, बराबर है ना? लेकिन भगवान से भी शक्तिशाली एक चीज है, और वो है भक्ति। क्योंकि भक्ति भगवान को वश में कर सकती है, भक्ति भगवान को आकर्षित कर सकती है। और पांडवों का उदाहरण से हम ये जान सकते हैं, इसकी पुष्टि है ये, कि पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रेम से आकर्षित कर दिया था, इसलिए भगवान उनके संग में रहे। इसलिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि भक्ति का ये गुण है अंतिम लक्षण छठा, श्री कृष्ण आकर्षणी। कि श्री कृष्ण को न केवल भक्ति आकर्षित करती है लेकिन उनको बांध के भी रखती है। भगवान कृष्ण की दामोदर लीला आप सब जानते हैं ना, माता यशोदा ने क्या किया भगवान कृष्ण को, उखल से बांध दिया। किस चीज से बांध दिया? अरे 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 अरे, रस्सी से बांधा, भक्ति से बांधा, रस्सी से नहीं बांधा उनको। भगवान के साधारण रस्सी से बांधे जा सकते हैं? जब रस्सी से बांधना चाहा माता यशोदा ने, तो क्या दशा हुई माता यशोदा की? हर बार रस्सी दो उंगली कम पड़ गई। माता यशोदा ने बहुत सारे रस्सी एकत्र की, एक बांध बांध कर जितने भी रस्सी लाए फिर भी दो उंगली कम पड़ रही थी रस्सी। माता यशोदा के पसीने छूट रहे थे, और उधर सारे अन्य गोपियां इस दृश्य को देखकर बड़ा आनंद आ रहा था उनको, हंस रही थी, सब मजा ले रही थी इस दृश्य का, कि कैसे माता यशोदा हैरान होकर कृष्ण को बांधना चाह रही हैं उखल से। कृष्ण ने भी बहुत आनंद लिया इसमें अपने माता को ऐसे विचलित देखकर। कभी कभी बच्चे भी आनंद लेते हैं ना अपने माँ को सताने में, ऐसे होता है ना कभी कभी, हम देखते हैं घरों में। तो ऐसे भी कृष्ण ने थोड़ा बहुत आनंद लिया अपने माँ को सताने में, लेकिन फिर सोचा नहीं ठीक है अब चलो बहुत हो गया, माँ परेशान हो गई, अभी नहीं करना है। तो फिर खुद ब खुद रस्सी ठीक हो गई, माता यशोदा ने बांध दिया। तो भगवान अपने आप को बंधने में जब तैयार हुए, किस वजह से? उन्होंने अपने माता के प्रेम को स्वीकार किया, अपने माता के डांट को स्वीकार किया, क्योंकि उस डांट के पीछे प्रेम था। इस प्रेम से आकर्षित होकर, इसके वश में आकर श्री कृष्ण अपने आप को मां के हवाले कर दिया। ठीक है रस्सी से बांधो मुझे, उखल से बांधो, इस तरह से भगवान बंधे गए। तो ये है भक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण, सबसे महत्वपूर्ण गुण छठा, कि यह भक्ति भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि वो भगवान को आकर्षित करके भगवान को वश में कर सकती है। और किसी भी चीज से हम भगवान को वश में नहीं कर सकते, वश में करने की बात तो दूर है, भगवान को हम जान भी नहीं सकते। इसलिए हमें ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का मार्ग अच्छी तरह से स्वीकार करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमेशा अपने शिष्यों को बताया करते थे कि भगवान के दर्शन, भगवान को देखने के लिए इतना आतुर न होना। हाँ, दर्शन करना चाहिए मंदिर में आकर, लेकिन कच्चे अवस्था में, जैसे कि ध्रुव महाराज के सामने, प्रहलाद महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए, वैसे भगवान हमारे सामने भी प्रकट होने चाहिए, ये आशा हमें नहीं करनी चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि भगवान को देखने के इच्छुक मत हो, भगवान की इतनी अच्छी तरह से सेवा करो कि वो तुम्हारे प्रति आकृष्ट होकर तुम्हें देखने के लिए आएंगे। क्योंकि भक्ति करने से भगवान आकर्षित हो जाते हैं, फिर भगवान देखने आते हैं, हाँ चलो मुझे वहां जाना चाहिए, ये कौन है मेरा भक्त जो इतनी अच्छी तरह से मेरी सेवा करता है, चलो चलो वहां जाकर देखते हैं। आपको याद होगा जब हमने चौथे लक्षण की चर्चा की थी, कौन सा है चौथा लक्षण भक्ति का? सुदुर्लभा। इसमें भी रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति से भगवान आकर्षित हो जाते हैं भक्त के प्रति, और यहां भी इस बात को, इस लक्षण की चर्चा के समय रूप गोस्वामी इसी चीज को बताते हैं। लेकिन इस स्तर में, जैसे कि पांडवों का स्तर है, श्री कृष्ण का आकर्षण इतना ज्यादा है, इतना तीव्र है कि भगवान को और कोई चारा नहीं रहता। भगवान अपने भक्तों के हाथ में एक यंत्र या कठपुतली बन जाते हैं। तो ये भक्ति मार्ग है जिस पर हम चल रहे हैं, और केवल भगवान के भक्तों के संग में आकर बड़े हृदय से, भक्ति भावना से, सेवा भावना से हमें उनका नाम कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए, उनकी कथाओं का श्रवण करना चाहिए और उनकी अन्य तरह से सेवा करनी चाहिए। ऐसे करने से हम भी श्री कृष्ण को आकर्षित कर सकते हैं और फिर सदा उनके संग में रहकर उनकी सेवा करते रह सकते हैं। ये हमारी जीवन की परिपूर्णता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आपके कोई टीका टिप्पणी प्रश्न इत्यादि हैं? बहुत अच्छी तरह से हम सबको भक्ति करनी चाहिए, फिर श्री कृष्ण आकर्षित हो जाएंगे।
हाँ जी, साथ ही बने थे तो स्वयं जो सारे ब्रह्मांड उनके अंदर हैं, तो हनुमान जी को बाहर लेकर के वहां पर क्यों बिठाने के लिए कहे, क्यों बिठाए थे झंडे में, जो कि कर्ण के युद्ध के समय ही सिर्फ बिठाए थे कि आप यहाँ पर लेकर बैठे, क्योंकि
अगर श्री कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं तो उन्होंने हनुमान जी को ध्वज के ऊपर क्यों बिठाया, है ना? क्योंकि भगवान कभी अकेले नहीं होते, भगवान हमेशा अपने भक्त के साथ होते हैं। अर्जुन का एक नाम है कपिध्वज, जिनके ध्वज के ऊपर कपि वानर हनुमान जी हैं, हमेशा विराजे रहते हैं। और भीमसेन को भी हनुमान ने वरदान दिया था कि मैं अर्जुन के रथ पे हूं उस ध्वज में, और जब तुम गर्जना करोगे युद्ध में तो मैं भी तुम्हारे गर्जना में, मैं भी मेरी गर्जना मिलेगी। और इसी जब भी भीम गर्जना करते थे युद्ध के समय तो हनुमान जी की गर्जना भी साथ में आती थी, और ऐसे तेज गर्जना होती थी दोनों की मिलाकर, अकेले भीम की तो काफी है और साथ में हनुमान जी की भी मिल गई तो ऐसे हृदय तोड़ने वाली बात हो जाती थी, सारे कौरव कांपने लगते थे वो गर्जना सुनकर। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ में रहते हैं, भक्तों से अलग नहीं होना चाहते हैं। तो जिस तरह से लंका के युद्ध में श्री राम के साथ हनुमान जी थे, यहां पर वही श्री राम श्री कृष्ण के रूप में हैं और उनके भक्त अर्जुन उनके साथ में हैं। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानी तीर मतिर मम। गीता के आखिरी श्लोक में संजय कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, जहां पर धनुर्धर अर्जुन हैं, वहां पर विजय नीति यश इत्यादि ये सब होना ही है। तो भगवान अपने भक्त के साथ हमेशा रहना चाहते हैं, इसलिए हनुमान जी भी वहां पर साथ में रहे। और कोई प्रश्न किसी का?
जब ब्रह्मा और शिव राम की भक्ति करते हैं तो फिर राक्षस लोगों को पता नहीं है, या और लोग जो करते हैं कि विष्णु की भक्ति करना चाहिए राम की, तो उनकी क्यों करते हैं, जो स्वयं ब्रह्मा और शिव उनकी भक्ति करते हैं तो फिर इनकी करने का क्या प्रयोजन है?
जब ब्रह्मा और शिव राम की भक्ति करते हैं तो
लोग, या और जो लोग इनकी भक्ति करते हैं ब्रह्मा और शिव की, तो क्या इनको तो पता है कि इनकी भक्ति करना चाहिए विष्णु को, क्योंकि ये उनके उनसे उद्गम है तो इनकी भक्ति भी क्यों करते हैं?
राक्षस लोग ब्रह्मा जी और शिव जी की सेवा क्यों करते हैं?
हाँ, या और लोग जो करना चाहते हैं इनकी, उनको छोड़ करके सोचते हैं कि शिव की भक्ति करना चाहिए ब्रह्मा की।
हाँ, तो, मतलब आपका प्रश्न है कि भगवान विष्णु को छोड़कर राक्षस लोग हैं या अन्य लोग हैं वो देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं, यही आप पूछ रहे हैं ना?
इनकी भक्ति करते हैं, विष्णु की भक्ति करते हैं शिव और ब्रह्मा।
हाँ, जब स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी विष्णु की भक्ति करते हैं तो दूसरे लोग ब्रह्मा जी शिव जी की सेवा क्यों करते हैं? कामस्तस्य हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्य नियत स्वया। कामस्तस्य हृतज्ञान, क्योंकि हृदय में काम वासनाएं भरी हुई हैं और देवी देवताओं से वो इन काम वासनाओं की पूर्ति कराना चाहते हैं, इसलिए देवी देवताओं की पूजा के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करते हैं, क्योंकि देवी देवता बड़े जल्दी से इन इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। कांक्षंतः कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते इह देवता। चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं गीता के कि ये सब लोग देवी देवताओं की पूजा इसलिए करते हैं कि बहुत जल्दी से देवी देवता उनकी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, इसलिए देवी देवताओं के पास जाते हैं। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण।
यहाँ प्रश्न है, यहाँ पर जब भगवान सभी के हृदय में है तो हाँ, जब सारा सारे ब्रह्मांड मेरे अंदर हैं, तो ये सब गलत कार्य क्यों हो रहे हैं? जब सारे ब्रह्मांड भगवान के भीतर हैं, तो फिर ये सारे गलत काम क्यों हो रहे हैं? आप ही बताइए क्यों होते हैं, क्या कारण है? क्या ये पाप का कारण भगवान है? लोग कहते हैं ना कि पत्ता भी भगवान की अनुमति के बिना नहीं हिलता है, तो अगर हम किसी गाय की हत्या कर रहे हैं, किसी का खून कर रहे हैं, कुछ और चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, ये भी भगवान की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि भगवान जिम्मेदार है तो हमको दंड नहीं मिलना चाहिए। हाँ, क्यों, कौन जिम्मेदार है? कल शाम को भी अंग्रेजी का प्रवचन में यही चर्चा हो रही थी, हमारे हृदय में कोई एक और शक्ति है जो हमें ऐसे गलत काम करने में प्रेरित करती है, वो शक्ति का नाम क्या है? काम। काम, काम मतलब क्या है? भगवान की सेवा के अलावा और कोई भी भावना हो उसको काम कहते हैं। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, अरे धरे आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो हमारे इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जब हम कार्य करते हैं उसको काम कहते हैं। तो जब तक व्यक्तियों के हृदय में भोग वृत्ति रहती है तब तक पाप रहेगा, तब तक गलत काम होंगे, और भगवान केवल अनुमति देते हैं, भगवान जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो पाप हो रहे हैं उस व्यक्ति के इच्छा के अनुसार। क्योंकि वो इच्छा रखता है वो व्यक्ति, तो भगवान उस इच्छा की पूर्ति के लिए अनुमति देते हैं, लेकिन साथ साथ उसी व्यक्ति को उस पाप का फल भी भुगतना पड़ता है। जीव को भगवान ने स्वतंत्रता दी है जिसका सदुपयोग करके जीव भगवान की सेवा कर सकता है, भगवान से प्रेम कर सकता है और दिव्य आनंद को प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसी स्वतंत्रता का अगर जीव दुरुपयोग करता है तो फिर वो पाप करता है और फिर उसे पाप का फल भुगतना पड़ता है। इसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। हरेक जीव जिसने कि अपने इच्छा का दुरुपयोग किया है वो अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार है। तो ये संसार में पाप इतने सारे क्यों चल रहे हैं? क्योंकि पापी लोग हैं जिनके हृदय में नाना प्रकार के काम वासनाएं हैं, भोग वृत्तियां हैं, इसलिए सब हो रही हैं और इनको इन कामों का फल भी मिलेगा। ठीक है, को पुरुषलिंग इस श्लोक में क्यों कहा गया है जो हमने इसमें बता, पुरुष लिंग नहीं मनुष्य लिंग, मनुष्य लिंग ऐसे बताया गया है। जब नारद मुनि कहते हैं परम ब्रह्म मनुष्य लिंग, गूढ़म पर ब्रह्म मनुष्य लिंग, ऐसे श्लोक है कि भगवान एक बहुत गुह्य रूप में आए हैं, हालांकि पर ब्रह्म है लेकिन मनुष्य योनि में एक प्रवेश किए हैं, ऐसे लगता है कि वो साधारण मनुष्य हैं, लेकिन वास्तव में मनुष्य नहीं है। योग माया और महामाया में अंतर क्या है? योग माया भगवान की वो शक्ति है जो कि भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए है, जैसे कि वृंदावन में रहने वाले सारे भक्त थे जो कृष्ण के अवतीर्ण होने के समय। और योग माया का काम है कि भक्तों का प्रेम बढ़ाना, भक्तों को भगवान की महानता को भुला देना, ताकि उनके प्रेम का मिठास और भी बढ़े। जैसे माता यशोदा को यह नहीं मालूम था कि कृष्ण भगवान है, योग माया की वजह से माता यशोदा को यही लगता था कि कृष्ण मेरा बच्चा है, इससे उनका प्रेम और तीव्र हो गया। ये योग माया का प्रभाव है। लेकिन दुर्योधन, उसके ऊपर महामाया का प्रभाव था, महामाया की वजह से भी व्यक्ति भूल जाता है कि कृष्ण भगवान है, लेकिन उसकी भक्ति बढ़ती नहीं है, उसको भक्ति से और ज्यादा दूर होते जाता है। तो जो अभक्त होते हैं वो महामाया के प्रभाव में होते हैं, और जो भगवान के बिल्कुल शुद्ध भक्त होते हैं वो योग माया के प्रभाव होते हैं। तो फिर प्रश्न निर्माण होता है, क्या प्रश्न? हम सब बीच वालों की क्या स्थिति है? हम अपने आप को भक्त कहते हैं तो हम ना इधर के ना उधर के, क्या होता है हमारा स्थान? जिस हद तक हम शरण में रहते हैं उस हद तक हम योग माया के प्रभाव में, जिस हद तक हम नियमों का पालन नहीं करते, भगवान का चिंतन मनन नहीं करते, जप नहीं करते, कीर्तन नहीं करते, उस हद तक हम महामाया के प्रभाव में जाएंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि, हम जिस हद तक हम भगवान के शरण में जाते हैं भगवान हमें उनके दिव्य प्रकृति का आश्रय देते हैं। तो ठीक है, ये है योग माया और महामाया का अंतर। गांधी जी ना महात्मा मनता थे बरोबर आहे का? हरे कृष्णा तो मला माहित नाही। आणि काही प्रश्न, और काही प्रश्न है?
हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा।
युद्ध भूमि में कृष्ण अर्जुन को 18 अध्याय और इतना श्लोक बताया, वो इतना जल्दी कैसे लिखे वो भगवद्गीता में?
इतने जल्दी नहीं, खड़े रहे सभी लोग सुनते सुनते। जब श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे थे भगवद्गीता, तो दुर्योधन से लेकर कर्ण, दुशासन लेकर सभी लोग उधर ही युद्ध भूमि पे सारे लोग थे, उधर खड़े रहे थे शांति से, जितना भी समय लगा हो, 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी लगा हो, सभी लोग वहां उपस्थित थे। किसी ने आक्रमण नहीं किया, चोरी चोरी पट करके तीर मार दिया, ऐसे नहीं किया किसी ने। आजकल का युद्ध नहीं था वहां उस समय, छुपे छुपे कहीं बॉम्ब रख के भाग गए, नहीं, सब लोग खड़े थे। फिर बाद में जब शंख बजे और फिर युद्ध चालू हो गया, और युद्ध के पहले भी सबको नमस्कार करना पड़ा, नमस्कार आशीर्वाद ये सब चलते गए, लेकिन हाथ से नहीं तीर से। पहले अर्जुन ने क्या किया, अपने से सारे जो वरिष्ठ हैं गुरुजनों को उन्होंने प्रणाम किया, लेकिन वो लोग तो वहां दूर थे और अर्जुन यहां थे, कैसे प्रणाम करते? उनके चरण कमलों के पास उन्होंने तीर छोड़ दिए। इसका मतलब है कि मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, चरणों में तीर मार दिया, चरणों के धूलि में। और फिर भीष्म देव ने सोचा, अरे अर्जुन मुझे प्रणाम कर रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए। तो भीष्म ने तीर छोड़ दिया, कहां छोड़ा? सर के ऊपर से गया। इसका मतलब है अर्जुन को उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो बहुत सारी चीजें हुई युद्ध के पहले, उसके बाद में युद्ध हो गया। उस समय लोग बहुत धीरज रखते थे, भगवत गीता सुनते समय भी सभी लोग वहां पर उपस्थित थे। ठीक है।
हरे कृष्ण प्रभु जी, जप माला में 108 ही मणि क्यों होते हैं?
जप माला में 108 मणि क्यों होते हैं? क्योंकि 108 ये एक शुभ अंक माना जाता है। भगवान की 108 प्रमुख गोपियां हैं, शास्त्र में 108 प्रमुख उपनिषद हैं, और अंततः क्योंकि भगवान ने ऐसे कहा कि 108 होने चाहिए, इसलिए होता है। बस। और कोई प्रश्न किसी को है? कि कई रविवार पहले हमने रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा की थी, आपको याद है? रघुनाथ दास चिड़ादही याद है ना सबको? तो उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी की चर्चा हो रही थी कि वो इतनी तीव्रता से भजन करते थे, बैठकर अकेले जप करते थे, उनको धूप की परवाह नहीं, गर्मी ठंडी की परवाह नहीं, कोई भजन कुटीर नहीं था। और जब वो बैठे थे तो एक बार स्वयं श्रीमती राधा रानी ने आकर कपड़े से उनको छांव दिया सूरज की गर्मी से। उस समय सनातन गोस्वामी वहां से आए, उन्होंने देखा, अरे, और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को डांटा और कहा कि ये ठीक नहीं तुम्हारे लिए। तो प्रश्न ये है कि भगवान आकर्षित हुए थे, श्रीमती राधा रानी आकर्षित हुई थी, तो फिर सनातन गोस्वामी ने क्यों रोका? क्योंकि भक्त की भावना ये नहीं रहती है कि भगवान या राधा रानी हमारी सेवा करें, हम उनकी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन भक्त ये नहीं चाहता कि कोई अपनी सेवा करे। भगवान की बात तो दूर है, भक्त दूसरे भक्तों से भी सेवा लेना नहीं चाहता है। इसलिए हम सबका नाम रहता है दीक्षा के बाद दास या दासी। क्यों? क्योंकि हम सबके दास हैं, हम किसी की सेवा नहीं लेना चाहते हैं। गांधी जी का अंतिम क्षण था तो उन्होंने हे राम ऐसे कहा, तो वैकुंठ जगत में गए कि नहीं? अभी हम कैसे कह सकते हैं उन्होंने क्या कहा, हम तो थे नहीं उस समय, हमने सुना नहीं। हे राम कहा, नथु राम कहा, क्या कहा हम नहीं मालूम, हम नहीं कह सकते। अगर वो शुद्ध भक्त हुए तो भगवान उनको ले जाएंगे, अगर शुद्ध भक्त नहीं तो फिर वापस आना पड़ेगा उन्हें। ये हमारे लिए, हम तर्क वितर्क नहीं कर सकते कौन वैकुंठ गया होगा कौन नहीं, है ना? ठीक है। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और याद रखिए आने वाले गुरुवार को एकादशी है, सारा दिन भर यहाँ कार्यक्रम चलता रहेगा, उसमें अवश्य भाग लीजिएगा। और अभी जब कीर्तन के बाद प्रसाद होगा, प्रसाद के बाद भी कार्यक्रम समाप्त नहीं है, इसके बाद भी भजन श्लोक पाठ इत्यादि का कार्यक्रम है, इसमें भी आप कृपया भाग लीजिएगा और सत्संग का फायदा उठाइएगा। हरे कृष्णा। अब संकीर्तन करेंगे।